नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द एवरीथिंग स्टोर ब्रेडस्टोन की खोज परक व्यावसायिक जीवनी है, जो जेफ बेजोस और अमेज़न के आरंभ से लेकर उसके विशाल प्रौद्योगिकी तथा खुदरा उद्यम बनने तक की पड़ताल करती है। पुस्तक का उद्देश्य केवल एक सफल कंपनी का उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि उस सोच, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और कठोर कार्य संस्कृति को समझना है जिसने अमेज़न को आकार दिया। स्टोन दिखाते हैं कि ऑनलाइन किताबों की दुकान से शुरुआत करने वाली कंपनी के पीछे आरंभ से ही बहुत व्यापक लक्ष्य था। लगभग हर वस्तु को कम कीमत, विशाल चयन और सुविधाजनक डिलीवरी के साथ उपलब्ध कराना। इसमें बेजोस की शुरुआती पृष्ठभूमि, .com संकट के दौरान अमेज़न की अस्थिरता और किंडल प्राइम तथा अमेज़न वेब सर्विसेज जैसे विस्तारों का वर्णन आता है। वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों, परिचितों तथा कंपनी से जुड़े लोगों के साक्षात्कारों पर आधारित यह पुस्तक प्रशंसात्मक कथा और आलोचनात्मक जांच दोनों का संयोजन है। इसलिए यह डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्लेटफॉर्म व्यवसाय और नेतृत्व की मानवीय लागत को एक साथ देखने का अवसर देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, किताबों की दुकान नहीं, असीम चयन वाला एवरीथिंग स्टोर। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि जेफ बेजोस ने अमेज़न को कभी केवल ऑनलाइन पुस्तक विक्रेता के रूप में नहीं देखा। किताबें शुरुआती उत्पाद इसलिए थीं कि उनके शीर्षक बहुत अधिक थे, उन्हें मानकीकृत ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता था और भौतिक दुकानों की तुलना में इंटरनेट पर कहीं अधिक चयन दिखाना संभव था। इस चुनाव में साहित्यिक रुचि से अधिक बाजार संरचना की समझ थी। बेजोस का बड़ा लक्ष्य ऐसा डिजिटल स्टोर बनाना था जहां ग्राहक को लगभग हर श्रेणी में अधिक विकल्प, आसान खोज और कम कीमत मिले। स्टोन के विवरण से स्पष्ट होता है कि यह दृष्टि ग्राहक अनुभव और पैमाने दोनों पर आधारित थी। बड़ा चयन अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है, अधिक ग्राहक विक्रेताओं और उत्पादों को लाते हैं और इससे चयन फिर बढ़ता है। यह चक्र अमेज़न की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का आधार बना। पुस्तक यह भी दिखाती है कि कम कीमत और सुविधा का वादा केवल विपणन नहीं था, उसके लिए आपूर्ति श्रृंखला, गोदामों, तकनीक और पूंजी में लगातार निवेश जरूरी था। इसीलिए शुरुआती वर्षों में लाभ से अधिक विस्तार को प्राथमिकता देना कंपनी की रणनीति का हिस्सा था। पाठक समझता है कि अमेज़न की कहानी किसी एक उत्पाद की सफलता नहीं, बल्कि इंटरनेट को खुदरा ढांचे के रूप में देखने की कहानी है। दूसरा, दीर्घकालिक सोच, .com संकट और लगातार पुनर्निवेश। द एवरीथिंग स्टोर अमेज़न के विकास को सीधी विजय गाथा की तरह प्रस्तुत नहीं करती। कंपनी ने तेज वृद्धि के साथ भारी खर्च, संदेह और .com मंदी का दबाव भी झेला। उस दौर में आलोचकों का मूल प्रश्न था कि क्या अमेज़न कभी टिकाऊ लाभ कमा सकेगा। पुस्तक के अनुसार बेजोस का उत्तर अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक ग्राहक मूल्य और ढांचागत क्षमता में निवेश था। वितरण केंद्र, तकनीकी प्रणालियां और नए उत्पाद वर्ग तत्काल मुनाफा घटा सकते थे, लेकिन भविष्य की सेवा क्षमता बढ़ाते थे। इस दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं कि हर निवेश सफल या निर्विवाद था, बल्कि कंपनी को नकदी, पूंजी बाजार की धारणा और संचालन संबंधी कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। स्टोन इस तनाव को महत्वपूर्ण बनाते हैं क्योंकि बाद की सफलता को शुरुआती जोखिमों से अलग करके नहीं समझा जा सकता। अमेज़न ने केवल इंटरनेट की वृद्धि का लाभ नहीं लिया, उसने मंदी के बाद भी अपने बुनियादी ढांचे और ग्राहक केंद्रित मॉडल पर दांव बनाए रखा। उद्यमियों के लिए उपयोगी निष्कर्ष यह है कि दीर्घकालिक सोच का अर्थ केवल बड़े नारे नहीं है, उसके लिए स्पष्ट आर्थिक तर्क, निवेश सहने की क्षमता और कठिन समय में प्राथमिकताओं पर टिके रहने की आवश्यकता होती है। तीसरा, किंडल और अमेज़न वेब सर्विसेज के जरिए नए बाजारों में प्रवेश। पुस्तक बताती है कि अमेज़न की महत्वाकांक्षा खुदरा तक सीमित नहीं रही। किंडल के माध्यम से कंपनी ने पढ़ने के अनुभव, डिजिटल पुस्तकों और उपकरणों के बाजार में प्रवेश किया। किंडल का महत्व केवल एक ई रीडर होने में नहीं था, उसने सामग्री, उपकरण और ऑनलाइन वितरण को एक ही व्यवस्था में जोड़ा, जिससे अमेज़न का प्रकाशन उद्योग से संबंध अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावशाली हुआ। दूसरी ओर, अमेज़न वेब सर्विसेज का उदय कंपनी की आंतरिक तकनीकी क्षमताओं को बाहरी सेवा में बदलने का उदाहरण है। विशाल ऑनलाइन कारोबार चलाने के लिए विकसित कंप्यूटिंग ढांचे को अन्य कंपनियों के लिए उपलब्ध कराना एक अलग व्यवसाय मॉडल था। स्टोन के वृत्तांत में ये पहले दिखाती हैं कि बेजोस नए बाजारों को केवल मौजूदा प्रतिस्पर्धियों की तरह नहीं देखते थे। वे इस प्रश्न से शुरू करते थे कि ग्राहक या डेवलपर की कौन सी जटिल समस्या को सरल, स्केलेबल सेवा में बदला जा सकता है। किंडल ने डिजिटल सामग्री की पहुंच को बदला, जबकि वेब सर्विसेज ने कई संगठनों के लिए कंप्यूटिंग संसाधन खरीदने के बजाय मांग के अनुसार लेने का रास्ता खोला। यह विषय यह भी सिखाता है कि विविधीकरण तब अधिक सार्थक होता है जब नई पहल कंपनी की मौजूदा क्षमताओं, तकनीक और वितरण शक्ति से जुड़ी हो। चौथा, विवाद, असहमति और हाइपर रैशनल कार्य संस्कृति की कीमत स्टोन अमेज़न की संस्कृति को उसकी उपलब्धियों से अलग नहीं करते। पुस्तक में ऐसी कार्यप्रणाली का चित्र है जिसमें कठोर बहस, ऊंचे मानक, मितव्ययिता और आंकड़ों पर आधारित निर्णय को महत्व दिया जाता है। अमेज़न के नेतृत्व सिद्धांतों में प्रचलित विचार हैव बैकबोन, डिसएग्री एंड कमिट इस दृष्टि को संक्षेप में व्यक्त करता है। आशय है कि कर्मचारी निर्णय से असहमत हो तो सम्मानपूर्वक और दृढ़ता से अपनी बात रखें, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद उसके क्रियान्वयन में पूरी प्रतिबद्धता दें। सिद्धांततः यह समूह सहमति के दबाव को घटा सकता है और बेहतर विचारों की जांच कर सकता है, लेकिन पुस्तक में वर्णित अनुभव बताते हैं कि तीखी बहस और लगातार प्रदर्शन दबाव कई लोगों के लिए भय, थकान या असुरक्षा का कारण भी बन सकते हैं। बेजोस के गुस्से और टकरावपूर्ण व्यवहार के वर्णन इस प्रश्न को सामने लाते हैं कि क्या असाधारण परिणामों के लिए असाधारण कठोरता आवश्यक है। पुस्तक इसका सरल उत्तर नहीं देती, इसके बजाय वह पाठक को दक्षता और मानवीय गरिमा के बीच तनाव देखने देती है। प्रबंधकों के लिए व्यावहारिक सबक यह है कि खुली असहमति उपयोगी है, पर वह तभी रचनात्मक बनती है जब चुनौती व्यक्ति के अपमान में न बदले और निर्णय प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बनी रहे। अंत में, सुविधा के पीछे छिपी प्लेटफॉर्म शक्ति और बाजार पर असर, अमेज़न का ग्राहक वादा, विशाल चयन, कम कीमत और तेज सुविधा, पुस्तक में एक व्यापक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता है। ग्राहक के लिए क्लिक में खोज, समीक्षा, ऑर्डर और डिलीवरी सरल अनुभव है, लेकिन इनके पीछे विशाल डेटा, विक्रेता संबंध, गोदाम संचालन और तकनीकी नियंत्रण काम करते हैं। स्टोन का वर्णन दिखाता है कि जैसे जैसे अमेज़न का पैमाना बढ़ा, वो केवल एक खुदरा विक्रेता नहीं रहा, वह बाजार तक पहुंच का माध्यम, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं का मंच, डिजिटल सामग्री का वितरक और तकनीकी अवसंरचना प्रदाता भी बन गया। यह बहुस्तरीय भूमिका कंपनी को नई सुविधाएं बनाने में सक्षम करती है, पर साथ ही आपूर्तिकर्ताओं, प्रकाशकों और प्रतिस्पर्धियों के साथ शक्ति संतुलन के प्रश्न उठाती है। पुस्तक विशेष रूप से यह समझने में मदद करती है कि डिजिटल व्यवसायों में ग्राहक केंद्रितता और बाजार प्रभाव साथ साथ बढ़ सकते हैं। बेहतर सुविधा अक्सर उपभोक्ता को लाभ देती है, किंतु वही सुविधा एक मंच को ऐसा केंद्रीय स्थान भी दे सकती है जहां अन्य व्यवसायों की निर्भरता बढ़ जाए। इस कारण द एवरीथिंग स्टोर को केवल बेजोस की जीवनी मानना अधूरा होगा। यह उस परिवर्तन का अध्ययन भी है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, खरीदारी, प्रकाशन और उद्यमों की तकनीकी जरूरतों के नियम बदल देते हैं। निष्कर्ष में, द एवरीथिंग स्टोर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अमेज़न को केवल खरीदारी की वेबसाइट के रूप में नहीं बल्कि आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने वाली संस्था के रूप में समझना चाहते हैं। व्यवसाय के विद्यार्थी, उद्यमी, प्रबंधक, प्रौद्योगिकी पेशेवर और प्लेटफॉर्म बाजारों में रुचि रखने वाले पाठक इससे ठोस संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें उत्पाद चयन, दीर्घकालिक निवेश, संचालन क्षमता, ग्राहक सुविधा और नए बाजारों में विस्तार के बीच संबंध समझने में मदद मिलेगी। साथ ही नेतृत्व और कार्य संस्कृति पर पुस्तक की दृष्टि इसे साधारण सफलता कथाओं से अलग करती है। यह बेजोस की रणनीतिक स्पष्टता और निष्पादन क्षमता को पहचानती है, पर कठोर, गोपनीय और टकरावपूर्ण वातावरण के संभावित दुष्परिणामों को भी सामने रखती है। यही संतुलन पुस्तक का महत्वपूर्ण गुण है। कई व्यावसायिक पुस्तकें सिद्धांतों को सुव्यवस्थित सूत्रों में बदल देती हैं, जबकि स्टोन की पुस्तक निर्णयों को उनके तनाव, अनिश्चितता और मानवीय प्रभाव सहित रखती है। पाठक को अमेज़न की हर पद्धति अपनाने का संदेश नहीं मिलता, इसके बजाय वह यह जांचने का आधार पाता है कि कौन सी रणनीतियां संदर्भ के कारण सफल हुईं, कौन सी क्षमताएं वर्षों के निवेश से बनी और किन सांस्कृतिक विकल्पों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। खोजपरक पत्रकारिता और कंपनी इतिहास के इस संयोजन के कारण यह डिजिटल व्यवसाय पर लिखी अधिक उपयोगी तथा विचारोत्तेजक पुस्तकों में अलग स्थान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्रैड स्टोन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।